ہے اس کے عنوان سے آپ کی خدمت میں چند امور کو ذکر کیا جاتا ہے اور بقیہ انشاءاللہ تعالی سوال جواب میں ہم اس کو ملاحظہ کریں گے. گزشتہ کچھ دہائیوں سے عالم اسلام کے اوپر جو استعماری حملے ہیں اور اس کی شدت ہے اس سے ہر انسان ہی واقف ہے, اور یہ سلسلہ در حقیقت اس وقت سخت ہو گیا جب اسرائیل کا ناجائز وجود وہ کرۂ ارض کے اوپر معرض وجود میں آیا. لہذا یہ ایک امریکی برطانوی سازش کا نتیجہ تھا, اور 1947 میں یا 48 میں اسرائیل کو فلسطین کی پاکیزہ اور مقدس سرزمین کے اوپر امریکہ برطانیہ کی ملی بھگت سے وجود دیا گیا. آغاز جس طرح سے ہوا وہ بعض زمینوں کی خریداری سے تھا, کیونکہ فلسطین, شام, لبنان یہ وہ علاقے ہیں کہ جس میں چند مذاہب اور قومیتیں موجود ہیں. ان میں سے بعض جو قومیں ہیں وہ یہودی مذہب سے منسلک ہیں, بعض جو جماعتیں یا قومیں ہیں وہ مثلا عیسائی ہیں, اور ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہیں. اور بلا شک و شبہ تینوں علاقوں میں, شام ہو, فلسطین ہو, لبنان ہو, اس کی اکثریتی آبادی مسلمان ہیں اور یہ مذاہب اقلیت میں ہیں. اب یہ زمین جیسا کہ مکہ مکرمہ بھی اسی طرح سے تھی کہ وہ مشرکین کے لیے بھی مقدس تھی اور مسلمانوں کے لیے بھی مقدس تھی, لیکن دین اسلام نے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب حکم آیا کہ اس کو انما المشرکون نجس, یا مشرکون کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا, تو اس میں بنیادی طور پہ پیش نظر توحید اور توحید کے احکام کو اس جگہ پر لاگو کرنا تھا. لہذا مذاہب اندر سے دین واحد ہے, لہذا ہر مذہب جو ہے وہ حقیقتاً اگر دین کے عنوان سے دیکھا جائے تو دین واحد ہے, اور وہ دین واحد اسلام ہی ہے. شریعتیں مختلف ہوتی رہی ہیں اپنے تقاضوں کے تحت, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت اور نبوت کے ساتھ یہ شریعتوں کا نزول بھی اپنے اختتام تک پہنچ گیا اور وہ کمال تک اس کی رسائی ہو گئی. لہذا یہاں پہ ضروری تھا کہ اس اگلے مرحلے میں پورے جہان کے لوگ جو ہیں وہ داخل ہوں, چونکہ قرآن کریم نے واضح طور پہ فرمایا اور چند جگہوں پہ یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے, تمام انسانوں کے لیے رحمت بھی بنا کے بھیجا, رسول, مبشر, منیر اور مبشر, نذیر, سراج منیر بنا کے بھیجا ہے. لہذا یہ زمین مملکت ہے اللہ تعالیٰ کی, انسان عبد ہے, اللہ کی ذات مالک ہے, مولا ہے, لہذا حقیقتاً اللہ کی اس زمین کے اوپر چلنی چاہیے نہ کہ غیر اللہ کی. اس تقاضے کے تحت جو آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہی خطوں میں, انہی گزشتہ مذاہب کی, عیسائی اور یہودیوں کی تعلیمات میں یہ بات موجود تھی کہ آخری رسول آئیں گے, اور ان کا نام بھی موجود تھا, حتیٰ کہ قرآن کریم نے سورہ صف میں یہ بات ذکر بھی کی, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ, وہ وقت یاد کرو کہ جب عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل, انی رسول اللہ علیکم, میں تمہاری طرف ایک رسول ہوں اللہ کی جانب سے, مصدقاً لما بین یدی من التورات, تورات میں سے جو کچھ میرے سامنے ہاتھوں میں موجود ہے اس کی میں تصدیق کرتا ہوں, ومبشراً برسول, اور اس رسول کی میں بشارت دیتا ہوں, یأتی من بعدی, جو میرے بعد آئے گا, اسمہ احمد, اس کا نام احمد ہے. لیکن ہوا کیا, فلما جاءهم بالبينات, جب وہ رسول بینات کے ساتھ آ گئے, قالوا هذا سحر مبين, تو یہی لوگ کہنے لگے جو منتظر تھے آخری رسول کے, جیسے اس ٹائم پوری دنیا منتظر ہے آخری امام کی منتظر ہے, اسی طرح آخری رسول اور نبی کے منتظر تھے, یہی منتظرین کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. لہذا بعض اپنے اس سابقہ شریعتوں جو نسخ ہو گئیں ख़त्म हो गया उनका किरदार, उसकी बिहाव के ऊपर साबिका जो कौमें थीं वो उसी के ऊपर कायम दायम रही। लेकिन इन्हीं ख़त्ों में अक्सर बेशतर लोग आहिस्ता आहिस्ता ईमान ले आए और दीन इस्लाम को कबूल कर लिया और मुसलमान कहलाए। लिहाजा फ़लस्तीन में भी अक्सरियती आबादी मुसलमान थे, लेकिन हम इस बात के मोतक़िद हैं कि उस सरज़मीन के ऊपर जो यहूदी आबाद हैं वो रहने और जीने का बराबर हक रखते हैं। अगर कोई ईसाई आबाद है तो वो जीने और रहने का हक रखता है। साजिश इस तरीके से शुरू हुई और आज के दौर में ये एक बड़े वसी शुबे के तौर पर भी उभार के पेश किया जाता है और बड़ा इसका प्रोपोगंडा भी हो रहा है कि क्योंकि आगाज़ यहाँ से हुआ था कि यहूदियों ने मुसलमानों से ज़मीनें ख़रीदना शुरू हुई। आगाज़ बिल्कुल आगाज़ में चूँकि गुरबत इन इलाकों में थी और मुसलमानों ने साथ जो दिया था वो दर हकीकत जर्मनी का साथ दिया और जर्मनी को शिकस्त हो गई और इस शिकस्त की सूरत में इस्तेमार जो अमरीकी बरतानवी इस्तेमार था वो गलबा पैदा कर गया। इसलिए फ़्रांस अमरीका बरतानिया इनके इत्तहादी जो थे ये गलबा पैदा कर गए और इस तरह से इन जंगों में इनको एक तसल्लुत हासिल हो गया। जब ये गुज़िश्ता कई सालों से सदियों से ये काम चल रहा है कि ताकतवर रियासतें कमज़ोर रियासतों की तकसीम बंदी कर लेती हैं, लिहाजा फ़्रांस ने तकसीम बंदी में अफ्रीकी बरआज़म अफ्रीका के कई ममालिक को अपना हिस्सा करार दिया, जैसे लीबिया है, नाइजेरिया है या दीगर ममालिक हैं। बरतानिया के जो हिस्से में आया वो हमारे ममालिक हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री के तौर पे, और अमेरिका के जो हिस्से में आया वो अमूमी तौर पे तमाम ही ममालिक के ऊपर वो आके बैठा लेकिन मिली भगत के साथ। और इनका काम क्या था कि हर मुल्क जो कमज़ोर रियासतें हैं उनके हालात को बेहतर ना होने दिया जाए ताकि उस मुल्क के रिसोर्सेज से और उस मुल्क के वसाइल से वो अपने ममालिक में इस्तफादा करें, बंदों के अतबार से, मादनियात के अतबार से और जो दीगर उन ममालिक में खसूसियात पाई जाए। जैसे पाकिस्तान एग्रीकल्चर एक कंट्री है, यानी एक ज़रात अराजी उसकी जो है वो ज़रात के लिए इंतहाई मौजू हैं, लिहाजा उसको इस इनवान से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक कॉलोनी बनाया। फिर उधर के अफराद को मजदूरी के अतबार से मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल करने के अतबार से अच्छी पेशकश करके अपने ममालिक में मुंतकिल किया और आस्ता आस्ता फिर दीगर उमूर अंजाम दिए जाते हैं। लिहाजा एक तरफ से अब ये प्लान बना कैसे कि ये जो इत्तहादी ममालिक थे अमरीका, फ्रांस और बरतानिया और उनके मिली भगत के बाद यूरोप यूनियन के ऊपर उनका एक किस्म का तसल्लुत, इसके नतीजे में पॉलिसियाँ उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की बनाई और उन पॉलिसियों के मुताबिक ख़ुद उन्होंने तकसीम बंदी की। हर मुल्क के लिए पॉलिसी ये बनाते हैं और इन पॉलिसियों को इजरा करने के लिए उन्होंने वहाँ पर ख़ुद अपने कठपुतली अफराद रखे हैं। उन अफराद को ऊपर लाने के लिए पॉलिटिकल जमातें उन्होंने बनाई हुई हैं, एनजीओज़ के नाम से जमातें बनाई हुई हैं। ये जमातें लोगों में सराहियत करती हैं और पैसा ये खूब पीछे से खर्च करते हैं और इस तरह से ये उभर के सामने आती हैं। और मदे मुकाबिल जो इनके हैं उनको काबू करने के लिए इन्होंने दहशतगर्द तंजीमें बनाई हुई हैं, वो मज़हब के नाम से हैं, सूबाई कौमी बुनियादों के अतबार से, जैसे बलूचिस्तान इस एतबार से भरा हुआ है कि वहाँ पर मजहबी भी दहशतगर्द पाए जाते हैं, जैसे मैंगल कबीला है उनको सपोर्ट इसी तरीके से दी जाती है और वो उसमें आल सऊद मजहबी ग्रोह को सपोर्ट करने के लिए आल सऊद को उन्होंने रखा हुआ है। और नेशनलिस्ट जमातें उन्होंने मसलन हमारे मुल्क में रखी हुई हैं जिनका काम आए रोज़ फितना फसाद पैदा करना है, और वो इस कदर कवी हैं कि उस जगह के सरदार, बड़े बड़े सरदार भी इन जराइम को कंट्रोल करने का इख्तियार नहीं रखते। इसलिए वाज़े तौर पे वो सरदार बयान करते हैं कि आप ये इख़बा बराए तावान की कार्रवाइयों को काबू कर सकते हैं तो जाएं करें, हमारे तो ये बस से बाहर है। लिहाजा इस कदर उनकी मदाखलत है। आपने देखा कि ये पॉलिसी जो बनती है ममालिक के अंदर, एक तरफ अब सारा का सारा इन पॉलिसियों के पीछे मकसद क्या है, वो मफाद और अपने मातहत रखना है। इसको हासिल करने के लिए یعنی مفاد اس ملک سے اپنے مفادات کو حاصل کریں اور اپنے انڈر رکھا جائے. تو انہوں نے ممالک کی ایک تقسیم کی, اور ان ممالک کی تقسیم میں امریکہ جو ہے وہ بڑے طریقے سے اوپر آ گیا اور پاور کو اپنے ہاتھ میں اس نے لے لیا. اس کے مد مقابل ایشیا میں جو طاقت تھی سپر پاور وہ رشیا تھی, وہ ٹوٹ گئی اور ٹوٹنے کے باوجود بھی ابھی بہت قوت رکھتی ہے, لیکن امریکہ کے مقابلے میں اس کی قوت شمار اس وقت دنیا میں نہیں ہوتی. اب نتیجہ یہاں پہ یہ نکلا کہ امریکہ اس ٹائم پالیسیاں بناتا ہے, اور وہی جو اس نے ایک ملک کے اندر قبضے کے لیے, چونکہ برطانیہ کو جب برصغیر میں ایک صدی حکومت کرنے کے بعد شکست ہوئی تو اس سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کسی بھی ملک میں جا کے بذات خود آپ حکومت نہ کریں, کیونکہ برطانیہ نے یہ حماقت کی کہ وہ خود اپنی فورسز لے کے اور اپنے گورنر لے کے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ منتقل ہوا اور حکومت کی, اور آہستہ آہستہ برے طریقے سے شکست کھائی اور ایک سال میں ہی یہ تقسیم بندی پاکستان انڈیا اور دیگر ممالک کی ہمارے سامنے آ گئی. اس کے بعد استعمار نے اسٹریٹجی تھوڑی سی تبدیل کی اور ہر ملک میں اپنے بندے انہوں نے پیدا کیے, یعنی پیداوار پودے خود لگائے انہوں نے. یہ پودے ایجوکیشن, میڈیکل, این جی اوز, ترقیاتی کام ان عنوانوں سے لگائے, اور انہی کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل جماعتیں انہوں نے کھولی, کیونکہ یہ دیہاتی لوگ تھے جیسے زرداری ہے, نواز شریف, اور یہ کوئی ان کا مقام اور کوئی ان کے پاس سلطنتیں نہیں تھیں, نہ کھانے پینے کے آداب سے واقف تھے اور نہ دیگر چیزوں سے. ان کو انہوں نے بڑے طریقے سے ہتیایا, اور اسی طریقے سے محکموں کے اندر اپنے عناصر پیدا کیے, جیسا کہ تعلیمی شعبہ ہے, عسکری شعبہ ہمارا ہے, اسی طرح دیگر دفاعی ہمارے شعبہ جات ہیں, سیاسی ہمارے جماعتیں ہیں, ان میں انہوں نے اپنے عناصر پیدا کیے. اب وہ جو پالیسی میکر ہیں وہ پیچھے بیٹھ کے اپنے مفادات کو دیکھ کے ایک پلان بناتے ہیں, اس پلان کو پورا کرنے کے لیے لمبی ان کے پاس فہرست ہے, وہ اس میں سے افراد کو چنتے ہیں, اس فرد کو اوپر لانے کے لیے کن کن مراحل سے اس ملک کے اندر گزرنا ہے, اس کے اپنے پھر عناصر کو ایکٹیو کرتے ہیں. مثلا بعض دہشت گردوں کو ایکٹیو کریں گے, ادھر سے پولیٹیکل جماعتوں کو ایکٹیو کریں گے, این جی اوز کا سہارا لیں گے, اور حالات کو خراب کر کے پھر اپنے بندے کو اوپر لا کے وہ بٹھاتے ہیں, اور بندہ آ کے پھر ان کے پالیسی جو ہوتی ہے اس کو وہاں پہ اجرا کرتا ہے. پاکستان ہو جائے, عرب ممالک ہو جائیں, کیونکہ عرب ممالک کے لیے ان کی پالیسی جدا ہے, وہ یہی ہے کہ عربوں کو کھلاؤ اور سلاؤ, یعنی ان کا کام یہی ہے کہ ادھر سے کھاؤ ادھر سے نکالو اور عیاشی کرو, بس نہ سوچنا ہے اور نہ کوئی اور انہوں نے کام کاج کرنا ہے. مزدور بنگلہ دیش, انڈیا, پاکستان سے پکڑے, اور سارا منصوبہ جو ہے وہ غربی ممالک کا ہے, اور تمام کی تمام اساسی ترین کمپنیاں وہ ساری کے ساری غربی اور یورپین کمپنیز ہیں. لہٰذا یہ مزدور کے طور پہ ادھر کے افراد استعمال ہوتے ہیں اور کھاتے پیتے یہ ہیں اور کھلا پلا کے اپنا مفادات لے رہے ہیں. پاکستان میں چونکہ بابصیرت رہنما گزرے ہیں مسلمان, یعنی انڈیا پاکستان دونوں میں شیعہ سنی کے درمیان ایک دین سے محبت پائی جاتی ہے, اس محبت کے تقاضے کی وجہ سے رہنما نکلتے رہے ہیں, دینی درسگاہیں چل رہی ہیں, لوگ ان امور میں دلچسپی لیتے ہیں, اور امریکہ کی شیطانی سیاست کے خلاف سراپا احتجاج بنتے ہیں. خلاصہ کلام, اب عرب دنیا کی طرف آئیں, چونکہ ہمیں اپنے ممالک میں تو استعماری جو سازشیں ہیں اس کا کاملاً جال پتہ ہے کہ وہ کیسے بنا ہوا ہے, کیونکہ اس ٹائم تو اس نے اتنا مضبوط سسٹم کر لیا ہے کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن, ہائی ایجوکیشن کے نام سے اعلیٰ ترین ذہن اس نے یورپ ممالک میں ہی جانا ہے. وہ یورپ ممالک میں جائے گا, انہوں نے یونیورسٹیز کا ماحول ایسا آلودہ بنایا ہوا ہے کہ وہ سب سے پہلے ایمان میں کمزور ہو جائے گا, یعنی فکری انحطاط اور فکری انحراف لانے کے بعد اخلاقی مسائل میں اسے گرفتار کریں گے. اچھا, یہ تعلیم کا حال ہے, کیونکہ کسی بھی ملک میں اصل اثاثے وہ تعلیمی, عسکری اور سیاسی ہوتے ہیں, یہ اصل خزانے شمار ہوتے ہیں, کیونکہ تعلیمی عناصر سے ہی انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں اور دیگر منصوبہ ساز شخصیات پیدا ہوتی ہیں. عسکری عناصر سے دفاع ہوتا ہے اور غیر ملکی عناصر کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور سیاسی عناصر کے ذریعے سے ملک کو چلایا جاتا ہے اور تمام تدبیر کی جاتی ہے۔ اب یہی ہمارے جو شعبہ جات ہیں ان سے غرب ضرور جانا ہے، جیسے فوجی مختلف طرح کی ٹریننگز کے عنوان سے ہماری پاک فوج کے تینوں ہی جو ونگز ہیں، فضائیہ ہے یا بری ہے یا بحری ہے، انہوں نے ٹریننگ غرب میں لینی ہے، ادھر بڑے بڑے ایوارڈ انہیں دیے جاتے ہیں، ادھر ہی ان کے لیے شرابیں اور دیگر فحاشی کے انتظامات کیے جاتے ہیں، اور وہی آئیڈیل بھی ہیں۔ سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ فوج اسلامی ہے لیکن اس کے اندر جتنے امور وہ چلاتے ہیں وہ سارے کے سارے غربی ہیں، ان کے ہیروز جو بنا کے پیش کرتے ہیں وہ امریکن کمانڈرز اور امریکن فورسز ہیں، جو ناولز ادھر پڑھائے جاتے ہیں، جو فلمیں انہیں دکھائی جاتی ہیں، جو تمغے انہیں دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں شعبہ جات کے وہ کاملاً غربی اور اسی لبرل سوچ کے تحت ہیں۔ لہذا یہ پھر باصلاحیت افراد کرنیل جرنیل اپنے خصوصیات کی اساس پہ آگے بڑھتے ہیں، ان کے ٹورز ادھر لگتے ہیں اور وہاں پہ انہیں ایوارڈ دیے جاتے ہیں، یا اور پھر اسی ماحول سازی کے ساتھ فکری اور اخلاقی انحراف پیدا کیا جاتا ہے۔ اور پولیٹیکل جماعتیں بھی اس حوالے سے ہمارے سامنے ہیں کہ انہوں نے پولیٹیکل مختلف جماعتیں بنائی بھی ہیں اور ان کے سربراہان وہ باہر کے ممالک میں ہی رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے قومیت کی اساس پہ جتنی جماعتیں ہیں ان کے سربراہان اور ان کے بچے اور ان کے اہل و عیال وہ بھی سارے باہر عام پڑھتے پڑھاتے یا رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو پھر ذہنی طور پہ اغوا کیا جاتا ہے اور اخلاقی مسائل میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ وہ لسٹیں بناتے ہیں اور لسٹیں بنا کے پھر بندوں کو تعین کرتے ہیں، تقرری ان کی ہوتی ہے اور پھر نئے چہرے بعض اوقات آ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو بھی سربراہ ہماری فوج کا بنتا ہے بالآخر وہ باہر سے گہرا ربط امریکہ اور برطانیہ اور ان ممالک سے کسی نہ کسی طور پہ رکھتا ہے۔ وہ سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کا تحفظ ہوتا ہی ان یورپین اور غربی ممالک میں ہے، تعلیم کے لیے جاتے ہی سارے کے سارے ادھر ہیں، اور جو جاتا ہے وہ، حتیٰ ایران کے اندر بھی یہی مسائل ہیں کہ ایران کے اندر جو جتنی بھی غربی اور امریکی اسرائیلی جاسوسیاں ہوئی ہیں وہ اسی طرح کے افراد کے ساتھ ہوئی ہیں، وہ پڑھ لکھ کے غرب سے جو آئے ہیں ادھر عہدوں کے اوپر بیٹھے اور وہی خائن نکلے۔ اس لیے جتنے بھی ایران کے اندر افراد ہیں جنہوں نے ترقیاتی امور میں کامیابیاں حاصل کیں، ان کی میزائل ٹیکنالوجی کو آگے بڑھایا، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو باہر کے ممالک میں پڑھ کے آیا ہو۔ اس لیے یہاں پہ بعض تجزیہ نگار شدت سے یہ تقاضا گورنمنٹ سے کر رہے ہیں ادھر کہ جو افراد باہر سے پڑھ کے آتا ہے اس کو ایران میں پابندی لگائی جائے کہ کوئی عہدہ نہیں دینا، کیونکہ ان کا کردار تو عملاً کوئی نہیں ہے۔ حتیٰ پاکستان میں بھی ایسا ہی کردار تو عملاً ان کا کوئی بھی نہیں ہے، انہوں نے پاکستان کے لیے کسی بھی مسئلے کو حل کرنا نہیں ہے اور کرنے دینا بھی نہیں ہے، کیونکہ امریکہ اور برطانیہ اگر پاکستان بجلی آ جائے، گیس آ جائے، پٹرول سستا ہو جائے اور ادارے اسی طریقے سے پھلنے پھولنے لگیں، وحدت مسلمانوں میں قائم ہو، تو امریکی کالونی سے باہر آ جائے گا پاکستان۔ وہ تو ایک عسکری طور پہ، تعلیمی طور پہ، اپنے فیصلوں کے اعتبار سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ آج اگر پاکستان اپنے پاؤں پہ اپنے فیصلوں کے اعتبار سے کھڑا ہو تو وہ تو سب سے پہلے امریکہ سے نجات حاصل کرے گا، سب سے پہلے وہ آل سعود سے نجات حاصل کرے گا، اور یہی کام جو پولیٹیشن کرتا ہے اس کے لیے اس کے اوپر ایک قیامت برس پڑتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ تو ہمارے پاس تھے کہ اپنے ممالک میں ہم یہ سیاست دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ انڈیا کی بھی یہی صورتحال ہے کہ انڈیا صرف امریکی کالونی نہیں، وہ کاملاً اسرائیلی کالونی بھی بنتی جا رہی ہے۔ لہذا ان لوگوں کو وہاں پہ فکری انحراف کے ساتھ ساتھ بدترین اخلاقی جرائم میں ملوث کیا گیا ہے۔ ان دو میں جب گرفتار ہو جاتا ہے اس بندے کو خریدنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے، اس بندے کو استعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور ایک بڑی آبادی، کروڑوں کی آبادی ان مسائل کا شکار ہو جائے کہ فکری انحراف اور اخلاقی بہرہ روی کا شکار ہو جائے، وہ کروڑوں کی آبادی کو کنٹرول کر لیں گے۔ اور کنٹرول کرنے کا انہوں نے سسٹم کیا بنایا، وہ موبائل ہے، وہ سیٹلائٹ ہے، وہ مختلف طرح کی ڈیوائسز ہیں، इस टाइम वो मुकम्मल तौर पे एक इंसान को उनके हाथों में देती है। मतलब अभी हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल में अकाउंट बनाते हैं गूगल, गूगल कुल उनके हाथ का है, इसराइली है, सारी मालूमात आपकी गूगल वो उधर पहुंचा रहा है। अगर आप गूगल पे कुछ नहीं लिखते तब भी ये इस्तेमाल हो रहा है मोबाइल, उसकी डिवाइसेस की नौीयत ही ऐसी है। अच्छा, अब गूगल में आप चीज़ें लिखते हैं वो आपकी शख्सियत को आयां कर देता है। मसलन आप स्टूडेंट हैं फिज़िक्स के, वो चीज़ें लिखेगा, अब बता रहा है कि ये बंदा, क्योंकि वो जो आपकी मालूमात लेता है, नाम है, एड्रेस है, ईमेल है, फलां फलां है, उधर से मोबाइल, वो ख़ुद ये पॉइंट आउट करता है, सारा मोबाइल बंद हो तब भी मोबाइल ये बोल रहा होता है कि ये बंदा इधर मौजूद है, यानी किस खत्ते में किस जगह पर मौजूद है वो बताता है। और मोबाइल जो है वो बंद भी हो तो कैच कर रहा होता है चीज़ों को, जैसे कि शहीद इस्माइल हनिया, वो इसी तरह से उनकी जेब में मोबाइल था, उन्होंने जो मिसाइल छोड़ा उसने जिस जगह का पीछा किया वो मोबाइल का पीछा किया, वो आके उन्हें सिर्फ उन्हीं को मोबाइल लगा, मोबाइल के ऊपर वो बम लगा, उधर ही दो अफराद थे वो कुरान पढ़ रहे थे, शहीद हो गए। लिहाजा ये अब गूगल के ऊपर जब आप अकाउंट हम बनाते हैं, वो जो इब्तदाई मालूमात ले लेता है उसके पास उस बंदे की सारी मालूमात आ गई। इस टाइम अरबों की आबादी को उसने काबू किया हुआ है, वो अपने यही अफराद अब जो फालियत अंजाम दे रहे हैं वो सारी हमारी फालियत किस पर है, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अच्छा इसी तरीके से वो थ्रेड के नाम से या इस तरह दीगर वो मेटा अपने तौर पे खोलता जा रहा है, और ये सारे के सारे आपके जो हम अपलोड करते हैं दीगर चीज़ें वो पूरी शख्सियत को जान लेता है। उसके बाद उनके लिए ये फैसला करना मुश्किल नहीं है कि कौन सा बंदा मुस्तकबिल के लिए ख़तरनाक है, कौन सा बंदा मुस्तकबिल में दर्द-ए-सर बन सकता है, किसकी कितनी सलाहियत है। अब वो उसको फिर बड़े तरीके से कंट्रोल करते हैं, वो कंट्रोल करने की यानी अपने उनके अनासिर हर मुल्क में इतने वसी तौर पर बैठे हुए हैं, इक्तसादी तौर पर इसी तरीके से NGOs के नाम पर, रफाई कामों के इनवान से, तंजीमों के एतबार से, वो बंदे का मुतालिया करके उसके गिर्द गैर महसूस एक किस्म का जाल बुनते हैं और उस गैर महसूस में उसको घेरते चले। मैं एक मलंगाना तबीयत का मैं एक फ़र्जी मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि मलंगाना तबीयत का है। अब उसके इसी गूगल की इस्तेमाल और व्हाट्सएप और इन चीज़ों से तबीयत का पता लग गया। अब ये है मुतहरक बंदा, इस मुतहरक बंदे को वो अपने तौर पर महाफिल में जाएगा, उन महाफिल में इनका फ़र्द मौजूद है, वो बड़े तरीके से इनसे राबता करेगा, राबता करके इसकी तशवीक करेगा, इसको हौसला दिलाएगा, इसमें अगर मैनेजमेंट की सलाहियत है आस्ता आस्ता इसको इदारा खोलने की तरफ ले आएगा, ज़ियारतों के नाम से मुख्तलिफ जगहों पर ले के जाएगा, अच्छी चीज़ें पढ़ता है उसे यूरोप में फिर चक्कर लगवाएंगे, वहाँ पर फिर उन्होंने और मोमिनीन के नाम से बंदे घेरे हुए हैं वो इसकी बड़ी हौसला अफजाई करेंगे और बड़ा इसको मदा सताइश करेंगे, आस्ता आस्ता वो फिर इस फ़र्द को तैयार करके ऊपर लेके आएंगे, और फिर जो इसके जहन में उन्होंने डाला होगा फ़क़त और फ़क़त वही वहाँ पे वो बयान करेगा और एक मुश्किल वहाँ पे आस्ता आस्ता खड़ी करेगा। लिहाजा ये हमारे पास सूरत हाल इस वक्त दुनिया में चल रही है कि मुमालिक के अंदर उन्होंने अफराद को कंट्रोल करने के लिए मीडिया अपने हाथ में बनाया हुआ है। अच्छा, उसकी सारी की सारी अदात अतवार को देख के उसे बास को डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बहुत निचली सतह की शख्सियत है उसकी, इसलिए उसे डायरेक्ट ख़रीदने में मसला ही नहीं है, उसे आराम से एजुकेशन के नाम से लेके आएं और एक माहौल दें, उस माहौल में उसके लिए कुछ, क्योंकि अपने मुल्क में तो उन्होंने यानी हमारे ममालिक में उन्होंने मुश्किलात को ईजाद करना है। जैसे आपने एक बिल के अंदर से चूहे को निकालना है तो बिल के अंदर मसलन धुआं भरेंगे, वो भाग के सांस लेने के लिए बाहर आएगा, हमारे ममालिक में यही उन्होंने सूरत हाल की है और ये रहनी है क्योंकि उन्होंने ख़ास जो पॉलिटिकल जमातें बनाई हुई हैं उन्हीं के बंदों ने आना है। जैसे अभी चंद दिनों पहले इसराइली बाज अखबारात में इमरान खान के लिए खसूसी उनकी दिलचोई और तशवीक के अतबार से हिमायत इसराइली अमरीकी लिखी गई, और इस टाइम आलम इस्लाम हालत जंग में है, मुसलमानों को बुरे तरीके से कत्ल वगारत की भीड़ चढ़ाया जा रहा है, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसकी अक्सरियती अवाम वो इस्लाम और मुस्लिमीन से एक कल्बी ताल्लुक मोहब्बत का रखते हैं, इसलिए उनकी अक्सर अफराद की तवज्जो हिज़्बुल्लाह सैयद हसन नसरुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की शहादत, मज़लूमीन गज़ा और पाकिस्तान लुबनान के मज़लूमीन, इसकी तरफ है। इस तवज्जो को वो देखें किस तरह से डाइवर्ट करें, हटा रहे हैं मुल्क के अंदर खुद साख्ता मसाइल। यानी एक फ़र्द जेल में बैठा हुआ है, उसके नाम के ऊपर खुद बाज़ अफराद को खड़ा किया गया, हड़तालें की गई, बंकर्स बनाए गए, मुख्तलिफ़ कंटेनर ला के रास्ते बंद किए जा रहे हैं, ख़बरनामों को लगाया कि बस इसी का शोर करो, यानी पूरे मुल्क की ज़हनियत को मोड़ा जाए। और इस मोड़ने के लिए उन्होंने प्लान पहले से बनाया हुआ है। अब यहाँ पे वो अफराद जो हैं, इधर फ़ौज का मसला इस्लामाबाद में आ गया और उन्होंने अपने हाथ में सारे इंतजाम ले लिए, जहाँ और मज़ीद हसासियत ईजाद की जाए। वो जब इमरान ख़ान बाहर था इतनी हसासियत नहीं थी, अभी तो वो बयानात भी सही तरीके से नहीं चल रहे और ना कोई ऐसा इशू पीछे खड़ा है, लेकिन इसको अचानक मीडिया ने इतना बड़ा बना दिया, कई इदारों को मुतहर्रिक कर दिया ताकि पूरी की पूरी कौम वो इस इशू के ऊपर वो मशगूल हो जाए और इधर के फिक्र अफकार को तर करे कि उनके अंदर कोई तहर्रुक पैदा ना हो जाए। इसी तरीके से बैठाए हुए उन्होंने तालिबान, खौफ है कि किसी जगह से कोई मदद या कुमक ना मिल जाए, चलो तालिबान के हमले उन्होंने कराना शुरू कर दिया। और ये बहुत ताजुबावर चीज़ है कि ये ऐसे वहशी दरिंदे ज़मीन के ऊपर इन्होंने पाले हैं कि एक उनकी गोली यहूद व नसारा पे नहीं चलती, उनके मौलवियों की ज़ुबानों पे ताले लग जाते हैं यहूद व नसारा की मजम्मत करने के लिए। अफ़गानिस्तान का कोई बयान तालिबान का नहीं आया, इसी तरह सुप्पा साहबा का कोई बयान नहीं आया, जिसे वाज तौर पर पता लगता है कि ये सहयोनी साजिशों के तहत मजहबी जमातें बनाई गई हैं। मसलन जमात इस्लामी वो सहयोनी साजिशों के तहत जमात नहीं है, इसलिए वो इस्लाम का जो मुतालिया रखते हैं और उम्मत इस्लामिया का जो मफाद समझते हैं और इस बात का इकरार, जैसे हाफिज़ नईम साहब का बयान इस हवाले से अच्छा बयान था कि हम अपने इख्तलाफात और उसके दलाइल अपनी जगह पर मौजूद रहते हैं। और ये शिया मौक़िफ़ भी है कि अपनी जगह पर इख्तलाफ़ और उसके दलाइल और उसका मौरिद बहस अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन उम्मत इस्लामिया के जो मुश्तरका मफादात हैं, मसाले हैं, और मुसलमान और इस्लामी ममालिक की सरहदों की हिफाजत, इस तरह के जो मसाइल हैं उसमें कामिलन वहदत की कोशिश करनी चाहिए। और जो इस वहदत को पारा पारा करता है या तोड़ता है, वो शिया हो या सुन्नी, वो असल उम्मत से गद्दारी कर रहा है, वो दीन इस्लाम से गद्दारी कर रहा है। लिहाजा आपने इस सारे सिनेरियो में देखा कि किस तरीके से इस्तेमार वो दाखिल हुआ और उसने बाकायदा सिस्टम बना दिए अंदर। इस टाइम मोबाइल सिस्टम कितने हमारे मुल्क के अंदर हैं, हत्ता कि सारे प्राइवेटाइज हो गए। प्राइवेटाइज हो गए किसके हाथों में जा रहे हैं, इन्हीं के हाथों में जा रहे हैं। सारा डाटा, सारा सिस्टम, हर फर्द के तमाम मालूमात इन्हीं के हाथों में जा रही है। इस टाइम पाकिस्तान का चप्पा चप्पा उनके लिए जाहिर और आशकार है, हर फर्द की सलाहियत से वो वाकिफ़ है। ये सूरत हाल इन्होंने की मुतालिया किया। अब सहूनियों ने वापस आना, सहूनी और यहूदियों में फ़र्क है। सहूनी तफक्कुर ये है कि ये तमाम बनी इसराइल के अलावा तमाम इंसान यहूदियों के अलावा वो इनके ग़ुलाम हैं, इन्हें ज़िंदा रखें, मारें, मफादात के लिए इस्तेमाल करें, इनकी हैसियत भेड़ बकरियों बकरियों वाली, ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं है। और पूरी दुनिया अल्लाह ने हमारे हवाले की है, हमें सबसे अफजल दुनिया में बनाया और हमने ही इस दुनिया में हुकूमत करनी है। लिहाजा सहूनी यहूदी सहूनी तब कहलाता है कि जब वो आलमी सतह के ऊपर यहूदियों की आबादकारी और यहूदियों की हुकूमत करार दे और उसके मुकाबले में सबको वो भेड़ बकरियों और जानवरों की सतह के ऊपर रख के सलूक करें। इस आइडिया को, क्योंकि अब ये सियासी पीछे से आइडिया बन जाता है, इसको इजरा करने के लिए उन्होंने फ़लस्तीन में ज़मीनें साजिशी तौर पे ख़रीदना शुरू किया। इब्तदा में चूँकि अब उन्होंने मुल्क के हालात तो अबतर किए हुए हैं, इक्तसादी मसाइल का शिकार है, गुरबत शदीद है, और उधर से तीन गुना ज़्यादा कीमत के ऊपर एक ज़मीन मिल रही हो तो आज पाकिस्तान में भी कौन नहीं चाहेगा। मसलन एक घर 2 करोड़ का बिकता है, वो 6 करोड़ का ख़रीद रहा है, ये बंदा तो बड़ा खुश होगा कि मैं इस महल्ले से निकलूँ, एक अच्छे महल्ले में जाऊँ। उन्होंने बड़ा ज़मीनें फ़रोख करना शुरू कर दी। अब जब देखा कि ये तो एक ख़ास आबादी इधर मुंतकिल हो रही है, बिल्कुल आगाज़ की बात है, ख़ास आबादी इधर मुंतकिल हो रही है, इसके ऊपर अब चुकन्ना हुए, क्योंकि बिलाखिर मिस्र से आवाज़ बेदारी उठती थी, ईरान से आवाज़ बेदारी उठा करती थी। उससे पहले जमालुद्दीन अफ़गानी और रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मुसलमानों को बेदार किया। मोहम्मद अब्दहू आए और ये सिलसिला फिर आगे बढ़ता चला गया और मुख्तलिफ मुमालिक में बेदार शख्सियात उन्होंने आगाह किया और इस आगाही के नतीजे में मुसलमानों ने फ़रोग़ करना तर्क कर दी। अब उन्होंने क्या किया, वो जो फ़रोग़ शुदा हैं उधर तो आबादी कुछ मुंतकिल हो गई और बैरूनी ममालिक से बिलखसूस यूरोप से और दीगर ममालिक से उन्होंने यहूदियों को करना शुरू किया, नौ आबादियाती सिलसिला शुरू किया, नौ आबादियाती यानी नई आबादी का सिलसिला। और इन फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती ताकत के ज़ोर पर, चूँकि मुसलमान शिकस्त खा गए, खिलाफत जो है वो टूट के रह गई और मुसलमानों में दमखम ख़त्म हो गया और अब अजम की लड़ाई उन्होंने डाल दी और इस कौमियत की असास के ऊपर एक सल्तनत जो खिलाफत खिलाफत उस्मानिया कहलाती थी, जिसका दारुल खिलाफा तुर्की था, उसका एक सूबा इराक़ था, एक सूबा शाम, उस वक्त शाम, लबनान और फ़लस्तीन एक ही मुल्क शुमार होते थे, यानी आज से 100 साल पुरानी तकरीबन बात है या 70-80 साल पुरानी बात है, एक मुल्क शुमार होते थे। उन्होंने कौमियत की असास के ऊपर अरब अजम, यानी या वो मज़हब का सहारा तोड़ने के लिए लेते हैं या इसी नेशनलिज्म का सहारा लेते हैं, कौमियत की असास के ऊपर और इसी तरह पॉलिटिकल जमातें उन्होंने कायम की अंदर और कौमियत की असास पर लड़ाइयाँ बरपा की। ये सूबे एक मुल्क बन गए, जैसे पाकिस्तान के चार सूबे या पांच सूबे सारे एक मुल्क बन जाए। और अब ये छोटे छोटे मुल्क हैं, एक मुल्क पे हमला करो, अगला कहेगा हम पे तो नहीं हमला हुआ, और हर मुल्क में इन्हीं के कठपुतली हुक्मरान बैठे हुए हैं, वो उधर हरकत ही नहीं देने देते, उधर फ़ौज के सरबराह भी कठपुतली इन्हीं की जानिब से हैं और इनके सियासी जो सरबराहान हैं और हुक्मरान हैं वो भी इन्हीं के बंदे बैठे हुए हैं, वो पूरी कौम को असलन हरकत में नहीं आने देते और आराम से एक मुल्क में जाके कब्ज़ा करते हैं। इसराइल इस तरह से मुसलमानों के दरमियान दाखिल हुआ कि एक तरफ कौमियत का इशू छोड़ के उसने इराक को अलग मुल्क बनाया, अरब अमारात को अलग मुल्क बनाया, कतर को, बहरैन को, अब कुवैत, वो इंतहाई छोटा सा एक शहर भी नहीं, कस्बा भी नहीं बनता, इतना छोटा है वो, उसे पूरा मुल्क उन्होंने डिक्लेयर किया है। वो अपनी हिफाजत क्या खाक करेगा, वो असलन मुल्क चला नहीं सकता और उसके ऊपर अब कुएँ उधर, उन कुओं के मुआहदे अमरीका के साथ, और उधर से जो तेल निकलता है, चूँकि सद्दाम के ज़रिए से उन्होंने जलवाए पहले और फिर जब उन्हें खामोश करना था तो मुआहदा इतना बड़ा किया कि उसकी बड़ी मकदार जो है वो तो अमरीका को पैसा फराहम करने और तेल फराहम करने में ही खर्च हो जाती है। लिहाजा ये तरीक़ा है कि कौमियत की असास पर पारा पारा खिलाफत उस्मानी और एक सल्तनत और एक मुल्क को किया। शाम तीन हिस्सों में तकसीम हुआ, फ़लस्तीन है, लबनान है, ख़ुद शाम है, उर्दन है, ये सारे शहर शुमार होते थे एक रियासत के। एक तरफ ये करके कठपुतली अपने हुक्मरान उधर बिठाए, सऊदी अरब में आले सऊद को ऊपर ले आए, बहरैन में आले खलीफा को मसलन ऊपर ले आए, अच्छा इसी तरह अरब अमारात में मसलन आले खलीफा को ले आए, बहरैन में उन्हीं के हुक्काम को ले आए, उर्दन में हाशमी ख़ानदान था जो सैयद कहलाता है उसको ऊपर ले आए और अभी भी उसे उन्होंने मुतअद्दिद किस्म के इजाज़ात, तावीज़ किस्म के दिए हुए हैं, उस तावीज़ों ने उन्हें बुरे तरीके से जकड़ा हुआ है और उर्दन सबसे करीब इसराइल से ताल्लुकात रखता है। इसी तरह अरब अमारात, कतर है, इन सब जगहों के ऊपर इनकी कठपुतली एक नौ हुकूमतें वजूद में आईं। ये जब टूट गए तो यहाँ पर अब वो कुव्वत के साथ दाखिल हुए। अब जब वो कुव्वत के साथ दाखिल हो रहे हैं एक रियासत के अंदर, एक मुल्क के अंदर, तो कौन आके उन्हें रोके? अतराफ में जो आबादियां थीं, मसलन अगर इस्लामाबाद में कोई दाखिल हो रहा है तो पिंडी से लोग जाएंगे, लाहौर से आएंगे, या इसी तरीके से अतराफ के जो इलाके हैं, सरहद खैबर पख्तूनख्वा के बास इलाके, इधर से हुकूमत आएगी और आने से रोकेंगे। लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने हर इलाके को मुल्क बना दिया और मुल्क बना दिया तो अपने पॉलिटिकल विंग को उन्होंने वहाँ पे मजबूत किया और हुक्मरान आए, उनकी फ़ौजी ताकतें बनने ही नहीं दी, हर फौजी तनसीब को उन्होंने उड़ाया और हर फौजी प्रोजेक्ट उन्होंने नाकाम किया। अब ये टोटल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो अमरीकी फ़ौज और अमरीकी अस्करी ताकत के ऊपर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उसी ने इन्हें तहफ़ देना है। लिहाजा आपने अब मुलाहिजा किया कि यहाँ पे अब फ़लस्तीनियों को पीछे धकेलना शुरू किया और काबिज़ हो गए। और ये इशू इस टाइम अरबी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी कसरत से छोड़ रहे हैं ये इशू, और जहन बना रहे हैं कि ये तो हमने ख़रीद लिया था मुल्क और ज़मीनें, अब जब ख़रीद लिए तो उनको तो हक़ नहीं पहुँचता ना, उन्हें ये हमारे हवाले कर देनी चाहिए। तो दर हकीकत ये एक बहुत बड़ा शुबा है। ठीक है, साजिशी तौर पे उन्होंने आगाज़ में ख़रीदी, मतलब कोई पाकिस्तान आके साजिशी तौर पे चीज़ें जगहें ख़रीद ले, जैसा कि अभी बहुत सारे ज़राई ज़मीनें वो अमरीका बरतानिया की कंपनियों ने ली हुई हैं, इधर बेदारी आ जाती है। अब यहाँ से वो ज़मीनें जब कब्ज़े में लेंगे और कहेंगे ठीक है अपना पैसा लो और जाओ, तो ये उस मुल्क के क्या शहरी हक नहीं रखते? आप वाज़ तौर पर कहेंगे बिल्कुल ये हक रखते हैं कि तुम अपना पैसा लो और जाओ, और आज की कीमत हम तुम्हें देने के लिए आमादा हैं। लेकिन ये नहीं कर सकते कि तुम इसको अपने वतन के तौर पर बना लो और हमारे ऊपर एक मुसल्लत होके हाकमियत के साथ बैठ जाओ। और दूसरा, कुछ हिस्सा मुल्क का लेने का मतलब कुल का कुल मुल्क लेना है, यानी हम में से कोई यूरोप में चंद ज़मीनें ले ले तो फिर पूरे के पूरे यूरोप के ऊपर हमला करके काबिज हो जाए। लिहाजा ये दो नुकात इस बात को साबित करते हैं कि ये फ़लस्तीन की जगह वो फ़लस्तीनियों के लिए है, चाहे वो फ़लस्तीनी यहूदी है, चाहे वो फ़लस्तीनी मुस्लिम है, चाहे वो फ़लस्तीनी मसलन ईसाई है या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, ये सरज़मीन फ़लस्तीनियों के लिए। यही मौक़िफ़ रहबर मुअज़्ज़म ने अपने इस खुतबात में बयान किया कि फ़लस्तीन की सरज़मीन फ़लस्तीनियों का हक़ है और इसके ऊपर नाजायज़ सहयोनी रियासत वो हक़ नहीं रखते कि उस जगह पे कायम रहें, और इनको बेदखल करने का हक़ फ़लस्तीनियों को हासिल है, और अगर वो ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो फ़लस्तीनी अपने दिफा और अपनी सरज़मीन को वापस लेने के लिए कानूनी, शरी और ज़ाहरी दुनिया के कवानीन के तहत वो कामिलन हक़ रखते हैं कि इन गासिब दहशत गर्दों को और दरिंदों को वहाँ से निकाला जाए। ये हमारे पास एक कज़िया इसराइल का है, लेकिन इसराइल कैसे पहुंचा? ये हमारे लिए बहुत ताजुबावर चीज़ है, और इस अगर हमने मसले को दिक्कत से ना देखा तो मज़ीद ये हालात गंभीर होते चले जाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल ऐन मुसलमानों के दरमियान आके आबाद हुआ और आबादी को उसने बिल्कुल पीछे धकेल दिया, और धकेलने के बाद अब वो एक मुल्क और रियासत का दावा करके उधर बैठ गया है। ये इसमें कैसे कामयाब? मसलन बैरूनी तौर पे एक गुरोह आए, एक मज़हब के गुरोह आए और लाहौर में ज़मीनें ख़रीदने के कुछ ज़मीनें ख़रीदने के बाद कब्ज़ा कर लें। आप कहेंगे कि ठीक है, ज़मीनें वो कानून पाकिस्तान के तहत ख़रीदते हैं, कब्ज़ा किस चीज़ का? कब्ज़ा की तो इजाज़त नहीं उन्हें दी जा सकती, एक कलील इस्तफादा करें और ठीक है, असल असासे तो वो गवर्नमेंट के शुमार होते हैं, किसी की भी मिल्कियत हो, कोई भी शहरी हो। आज के दौर में ये कानून हर जगह पे साबित शुदा कानून माना जाता है कि असल वो गवर्नमेंट और रियासत की जगह शुमार होगी, और उनके कवानीन के तहत वो आर्जी मिल्कियत के तौर पे एक शहरी उसे इस्तेमाल कर सकता है या बैरूनी मुल्क से आया हुआ एक फ़र्द इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, अब इस कानून के तहत तो वो नहीं अंदर सराइयत कर सकते, वो कैसे आके सराइयत करेगा? क्योंकि अगर वो असलहा लेके आए तो वो पाक फ़ौज मौजूद है, उसकी सख्त खबर लेगी, और बिलफर्ज़ अगर फ़ौज को उसने कमज़ोर भी कर दिया और असलहा लेके आए तो वहाँ पे अतराफ़ में जो मौजूद हैं लाहौर के इर्द गिर्द और लाहौर के अपने गयूर मुस्लिमीन, वो मुसलमान इजाज़त नहीं देंगे कि ये गैर मुस्लिम या गैर पाकिस्तानी अजनबी ये अंदर हमारे सराइयत कर जाए। वो जब ज़ोर ज़बरदस्ती मद मुकाबिल करेगा तो यहाँ पे वो सख्ती के साथ उससे दो चार होंगे। अच्छा, अब इस माहौल को कैसे तोड़ा जाए? क्योंकि अगर आपके दिफा के लिए उस जगह पे आर्मी मुल्क की मौजूद है और अपनी कुव्वत के साथ मौजूद है, गैर मुल्की अनासर अंदर सराइयत नहीं कर सकते। नंबर दो, अगर गैरत मिल्ली मौजूद है, क्योंकि एक गैरत दीनी है, एक गैरत मिल्ली है, गैरत मिल्ली यानी हमारे मुल्क पे किसी ने हमला किया है तो हम उसमें दिफा करें और उसको दंदान शिकन मुँह तोड़ जवाब दें, लिहाजा अब ये अंदर दाखिल हो के साजिशी तौर पर आया तो साजिश जल्दी हो जाती है, तो वो कैसे उस जगह पर सराहियत करेंगे, नहीं कर सकते। वाज़ जवाब है, मुल्क के बिल्कुल वसत में आके कैसे कब्ज़ा कर सकते हैं। चलो बॉर्डर एरिया में तो किसी किस्म की हम बात कर लें, मुल्क के अंदर कब्ज़ा करना ये नहीं हो सकता। इसके लिए क्या ज़रूरी है? अव्वल ये ज़रूरी है कि आर्मी ख़त्म की जाए या आर्मी को मरीज़ किया जाए। मरीज़ यानी जैसे मिस्र में अभी मरीज़ किया हुआ है उन्होंने, वो है पूरी ट्रेंड आर्मी है, और एक दिन में ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं अगर वो मुदाखलत करें। तुर्की की बड़ी ट्रेंड आर्मी है और जदीद असलहे से मुसल्लह है, एक दिन में इसराइल नीस्तो नाबूद हो सकता है, और अमेरिका भी अपने घुटने टेक देगा कि अगर मिस्र और तुर्की वहाँ पे मदाखलत करके अपने वज़ायफ़ इस्लामी को अंजाम देते हैं। लेकिन दोनों को मरीज़ किया उसने, यानी वो अपने तौर पे वही सख्त ट्रेनिंग करते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, रिटायर होते रहेंगे, एक सर्कल चलो चलाते रहो। कुछ इसी तरह का सिलसिला हमारे मुल्क में भी है, और उनको मसरूफ़ करने के लिए उन्होंने दहशतगर्द कभी तालिबान के नाम पे, कभी कौम परस्त बलोचिस्तान में मसाइल खड़े करने के लिए, कभी फ़िरकावारियत की आड़ में उन्होंने रखे हुए मसाइल, वो हर टाइम या इसी तरीके से मरीज़ करें उन्हें कि सारी आप ट्रेनिंग श्रेनिंग खूब करें और अपने असलहे को खूब रिहर्सल वगैरह करें, चलाना कहीं पर भी नहीं आपने, एटम बम संभाल के रखें, कभी ना कभी इंशाल्लाह ताला काम आ ही जाएगा। कहाँ काम आना है अभी तक कौम पाकिस्तान को ये खबर नहीं हो सकी, लिहाजा मरीज करें या उलझा के रखें। लिहाजा तुर्की और मिस्र में इसी तरह उन्होंने उलझा के रखा हुआ है, मरीज़ किया है, चूँकि मरीज़ करेंगे तो अंदर सराहियत कर सकेंगे, वह अगर मुतहरिक हो तो आप तो अंदर नहीं दाखिल हो सकते, लिहाजा ये एक कदम उठाएंगे। दूसरा कदम क्या उठाएंगे? मुल्क के अंदर ऐसे सख्त और शदीद हालात किए जाएं कि वो रहने सहने के लिए इस सतह के ऊपर आ जाएं कि वो सिर्फ चीज़ों को बेचें और पैसा लें, पैसे के पीछे भागें, यानी उनके इक्तसादी मसाइल को शदीद ख़राब कर दिया जाए, या वो बैरूनी मुल्क में आस्ता आस्ता मुंतकिल होकर रहना शुरू कर दें, या भारी मालियत अगर उधर रहना चाहते हैं तो उन्हें दरकार है और उसके लिए वो फिर फरोख्त करना जगहों को शुरू कर दें। और क्या है मसला? उनके अंदर से गैरत मिल्ली ख़त्म कर दें, वो जो वतन और मुल्क से एक ताल्लुक गहरा महसूस होता है उसे बहुत कमज़ोर करना शुरू कर दें। अच्छा, चौथी चीज़ क्या है? जहाँ से उन्हें ताकत मिल सकती है, ताकत मुहैया हो सकती है, उनसे इर्तबात काटा जाए, मसलन उस मुल्क को तोड़ दिया जाए कि ये पहले एक सूबा थे और एक रियासत थे, और रियासत की फ़ौज होती है वो पूरे मुल्क से बनती है, ये जाके टकराएगी, उनमें ज़रूरत नहीं है कि वो उसका मुकाबला कर सकें, चलो अब ये हर सूबे को मुल्क बना दिया और मुल्क के ऊपर अपने सिस्टम उन्होंने कायम कर दिए, और उनको बाज़ को उन्होंने बड़ी बड़ी पेशकश करके वहाँ पे तरक्याती काम करके दी, जैसे अरब अमारात इसी तरह से बैठा हुआ है, टोटल आर्टिफिशियल ज़िंदगी है अरब अमारात की, उधर एक धमाका हुआ तो सारा वो शीशा टूट जाना है, वो अब टोटल बिहाफ़ अमेरिका बिहाफ़ के ऊपर हैं, आले सऊद टोटल अमेरिका बिहाफ़ के ऊपर बैठे हुए हैं, इसी तरीके से बहरीन के अंदर, कुवैत के अंदर, ये जगहें नहीं इस काबिल के ये अमरीका से हट के कोई फ़ैसला कर सके। लिहाजा हम लाहौर में कैसे पहुंचेंगे? बलूचिस्तान काट दो, खैबर पख्तूनख्वा अलग मुल्क बना दो, अच्छा पंजाब अलग मुल्क बना दो, सिंध अलग मुल्क बन जाए। हाँ, अब आएंगे वो पंजाब के ऊपर आएंगे तो सिंध को कहेंगे तुम क्यों हमला करना चाहते हो, ये तो तुम्हारा मुल्क नहीं है, वो भी संभल जाएगा क्योंकि उधर भी उसने अपना सिस्टम बनाया हुआ है, इसी तरह बकिया सूबे। तो ये हाल फ़लस्तीन का इन्होंने किया, लिहाजा यही कुरान करीम। अब इसका तोड़ तो उन्होंने इजाद किया, तफरका डाला जाए, इन लोगों को ग़ुलाम बनाया जाए, यानी अपने बिहाफ पे ज़िंदगी ना करें, हम लोगों के बिहाफ पे ज़िंदगी बसर करें, कोई चीज़ ख़रीदनी है, कोई चीज़ बनानी है, कोई फ़ैसला कराना है, ख़ुद फ़ैसला करके कुछ ना बना सकें, जैसे पाकिस्तान में ख़ुद फ़ैसला करने की तरफ आ जाएँ वो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, फसादात शदीद तरीन फसादात शुरू हो जाते हैं, तो इसके बाद इन्हीं के बनाए हुए पॉलिसी के तहत वही चेहरे दोबारा आ जाते हैं। पाकिस्तान में कुल चेहरे कितने चल रहे हैं? सबसे बड़ा चेहरा फ़ौज का है, वही एक सर्कल चल रहा है, दूसरा चेहरा मुस्लिम लीग, तीसरा चेहरा पीपल्स पार्टी, और इन्हीं की नाअहल औलादें हैं कि नो एक लफ्ज़ सही तरह से उर्दू का बोल नहीं सकते, मुल्क के हालात से वाकिफ़ नहीं है, कोई उनके अंदर रमक नहीं है गैरत और मिल्लत की खिदमत के हवाले से। लेकिन ये बरसर इकतदार आएंगे, ऐसा यही काम उन्होंने फ़लस्तीन में किया, जहाँ जहाँ से अरब कुव्वत उन्हें मिल सकती है उसे सबसे पहले तोड़ा उन्होंने। दूसरा, असलन उस फ़लस्तीन में आर्मी बनने ही नहीं दी उन्होंने, और अगर बनी भी है तो आपस में उलझा दिया और फ़लस्तीन के मसले को मस्ख करके तहरीफ करके पेश किया। इसलिए रहबर मुअज़्ज़म अपने खुतबात में बयान फरमाते हैं कि दुश्मन पहले तहरीफ करता है फिर तहरीम करता है। अगर वो तहरीफ नहीं करेगा, आपकी फ़िक्र में मसाइल पैदा नहीं करेगा, आपके नज़रिए को नहीं तोड़ेगा, तो तब तक तो नहीं तहरीम कर सकता चीज़ों को आपके लिए ममनू। तहरीम यानी ममनू करना, वो ममनू नहीं कर सकता, वो पहले आके इधर ही मसाइल खड़े करेगा, तहरीफ करेगा और उसके अंदर मसाइल फ़िक्र में दाखिल करेगा, अब इंतशार बरपा हो जाएगा। एक शिया है, एक सुन्नी है, एक बलोची है, एक सिंधी है, मसला खड़ा करने के लिए NGOs खूब उन्होंने बना दी और तरह तरह के शख्सियात को मनसबों के ऊपर ले आए और एक अजीब सी खिचड़ी बन गई। वो टोटल उनके हाथ में है, उन्होंने अपने मुताबिक वो शतरंज के गोट खेलने हैं। अच्छा, अब ये वाले मसाइल जब पैदा होते हैं तो इसके नतीजे में वहाँ से अस्करी कुव्वतें नहीं उभर सकती, अपने बिहाफ पे वो कोई काम नहीं कर सकते। अभी आप पाकिस्तान का जायज़ा लें, उसमें एक भी चीज़ पाकिस्तान अपने असास के ऊपर नहीं बना रहा और सारी की सारी तकरीबन बड़ी कंपनियां वो इसराइली कंपनियां हैं, इसराइली प्रोडक्ट्स हैं, इसराइली सारी की सारी कंपनियों को पैसा वहाँ पे मुंतकिल हो रहा है, वो रखे उन्होंने असासे उधर ही हैं, फैक्ट्री उधर लगी हुई है, फैक्ट्री का मालिक मुसलमान है, सारे काम करने वाले मुसलमान हैं, ज़्यादा जो पैसा खर्च हो रहा है वो मुसलमानों का है, लेकिन 10% शेयर है, 20% शेयर है, वरना फार्मूला नहीं देंगे। वो 10-20% वो एक बहुत बड़ी तादाद बन जाती है। तो इसके मुकाबले में कंपनियां आती हैं, वो कंपनियां गिरा देते हैं और बड़े तरीके से उसको साजिश करके गिराते हैं। लाहौर में इस तरह से कई कंपनियों को उन्होंने बिठा दिया, पेप्सी और कोको कोला के मुकाबले में गोर में मसलन कंपनी बनी और उसका मवाद और उसका मयार वो भी अच्छा था, उसका मयार उन्होंने गिराया और आस्ता आस्ता उसे सफ़े हस्ती से उन्होंने मिटाना शुरू कर दिया और उसको तो लाहौर से बाहर असलन उन्होंने ज़्यादा इजरा ही नहीं होने दिया, वो बन ही नहीं सकी ज़्यादा। लिहाजा इस तरह की ये आप देख लें इक्तसादी मसाइल में घेरा जाता है, अपने पाँव में खड़े ना हों। इसलिए फ़लस्तीन की भी सूरत उन्होंने बनाई कि इधर जो ताकत है अस्करी ताकत, क्योंकि अस्करी ताकत के अनासिर हर ज़मीन के अंदर होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे ज़हनी अनासिर हर ज़मीन के खित्ते के ऊपर पाए जाते हैं, वो अफ्रीका हो, एशिया हो, अमरीका हो, ज़हन अल्लाह ताला ने अफराद को दिया। मसलन 100 बंदे हैं तो उसमें 2-3 बंदे ज़हनी तौर पर ऐसे होंगे कि जो एक बड़ी चीज़ों को ईजाद कर सकें, इख्तरा कर सकें, कशफ कर सकें, मजबूत हाथों वाले एक बड़ी तादाद में अफराद होंगे। इसी तरीके से बाज़ ऐसे अफराद होंगे कि जो अस्करी अनासिर की सलाहियत रखते हैं और एक मुल्क इन्हीं अनासिर की बदौलत अपनी रियासत को कवी करता है और अपनी रियासत को तरक्की देता है। इस टाइम इस्तेमार ने ऐसा सिस्टम ईजाद किया कि हर मुल्क के अनासिर वो अपनी तरफ मुंतकिल करता है, यूनिवर्सिटी के नाम पर सारे के सारे ज़हनी अनासिर मुंतकिल, अस्करी विमान से सारे के सारे अनासिर अपनी तरफ मुंतकिल, इसी तरीके से कारोबार और इक्तसादी अनासिर अपनी तरफ उसने मुंतकिल, क्योंकि बिजली गैस है ही नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा है तो फैक्ट्रियाँ कहाँ लगेंगी। इसलिए हम ये पनाह गुजीन सारे के सारे उधर यूरोप भागेंगे। ये जो अनासिर को काबू करना है इससे कौम दोबारा कभी भी उभर नहीं सकती, कभी निजात नहीं पा सकती, ये इस्तेमारियत कहलाती है। लिहाजा इसराइल जब आया तो उसने अस्करी अनासिर को आपस में उलझाया। लिहाजा इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के इनकलाब या इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक से पहले फ़लस्तीन अरब अजम का एक मामला शुमार होता था, दीन और इस्लाम से कोई ताल्लुक उसका शुमार नहीं होता था और उसी की तासीर अभी तक बाकी है कि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इसको अरबों का एक मामला समझते हैं। और इसी इशू को इस्तेमार बड़े पैमाने पे फैलाना चाहता है और इसी को मुहकम करना चाहता है ताकि इस्लामी और मुस्लिम उम्मा के इनमान से इस मसले का जायज़ा ना लिया जाए, क्योंकि इस मसले का जायज़ा इस्लामी उम्मा के इनमान से लिया जाए, एक उम्मत इस्लामिया के इनमान से लिया जाए तो ये 60-70 के दरमियान जो ममालिक हैं ये तो इनके सारे के सारे रिसोर्सेज इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने लग जाएंगे और वो हस्ती से उसका वजूद मिट के रह जाएगा। लिहाजा अब उन्होंने क्या किया कि इसको अरब अजम का मसला बनाया और असलाह पहुँचाया, अंदर असलाह पहुँचाया ताकि एक दूसरे को मारें। लिहाजा उधर अलफतह बनी हुई है, जिहाद इस्लामी है, फ़लाँ फ़लाँ हैं, मुख्तलिफ़ तरह की हिजबें थीं, वो हिजबें आपस में लड़ा कर, लबनान में भी ये सूरत हाल थी, मुख्तलिफ पॉलिटिकल जमातें थीं और हिजबें थीं, आपस में दरगीर थे, लड़ा करते थे, बिल्कुल इसी तरह जैसे पाकिस्तान में 10 रहबर शिया सुन्नी के बिठा के और सबको आपस में लड़ा दें। उन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही बोलते रहना है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोशिशें करते रहना है और इन उलमा और मशाइख की जितनी क़ुव्वतें हैं वो दाखिली मसाइल पर खर्च हो जाएँ। इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको कौमियत के मसले से निकाल के इस्लामी इनवान इनायत किया, क्योंकि अव्वल इस्लामी सरहदों पे नाजायज़ कब्ज़ा, मुकद्दस सरजमीन वो मुसलमानों के हाथों में थी और मुसलमान उस जगह की हिफाजत भी कर रहे थे और उस जगह के जो बासी हैं, बाशिंदे हैं, वो मज़हब भी इस्लाम का इख्तियार कर चुके हैं। और नंबर 3, ये एक ऐसा साजिशी वजूद अमरीका, बरतानिया, फ्रांस ने जन्म दिया जिसके ज़रिए से तमाम के तमाम इस्लामी ममालिक में बदतरीन दहशतगर्दी और बदतरीन हालात को उन्होंने मुसल्लत किया हुआ है। इस टाइम इसराइल है कि जिसने इन सब की सब चीज़ों को मुसल्लत किया हुआ है। मसलन इंडिया जो इस्तेमार मुस्तकबिल में बनने के शदीद खदशात ज़ाहिर होते चले जा रहे हैं और इस्लाम उम्मत इस्लामिया उससे खायफ और खौफजदा आस्ता आस्ता इस हवाले से होती जा रही है और होशियार होने की भी ज़रूरत है, वो इसराइल के बिहाफ के ऊपर है। हत्ता कि एहतमाल दिया जा रहा है कि एक तादाद जो अस्करी अनासिर हैं वो इंडिया से इसराइल मुंतकिल किए गए हैं, ना कि अमरीका से आए हुए हैं, इतना उनका गहरा इर्तबात है। अब ये तो दुश्मन ने काम किया, बस हम इसको अगर खुलासा करें तो वो खुलासे के तौर पर रहबर मुअज़्ज़म और दीगर इस्लामी मुफक्किरीन बारहा बयान करते रहे हैं कि दुश्मन तफरक़े के ज़रिए से दाखिल होता है, दुश्मन इस्तिक़लाल आपका खोता है, यानी आपको ग़ुलामी का खूगर और आदि बनाता है। मतलब ग़ुलाम अगर ग़ुलामी का आदि हो जाए तो उसको गैरत और आज़ादी उसकी कीमत का एहसास ही नहीं होता, यानी वो जो कूड़ों के अंदर, कूड़ा क्रिकेट के अंदर ज़िंदगी बसर करने का आदि हो जाए वो अतर की खुशबू की कीमत का नहीं जानता। आप अगर पाक और साफ़ फ़ज़ा से आए हैं आपको तब बू सुनाए सुंघाई देगी, लेकिन उस माहौल में कुछ देर आप रहें आपको वहाँ पे कोई बदबू का एहसास नहीं होगा। लिहाजा अव्वल चीज़ तफरीका उन्होंने डाला, वो कौमियत के एहसास पर हो, वो मज़हब के एहसास पर हो या वो किसी और इशू के ऊपर हो, प्रोपागेंडा के ज़रिए प्रोपागेंडा किया ही इसीलिए जाता है उधर तफरका ईजाद किया जाए, क्योंकि अगर ये बाहमी इर्तबात की कुव्वत ना टूटी असल में कब्ज़ा ही नहीं हो सकता। नंबर 2 कि उनसे इस्तिकलाल को छीना जाए, वो चीज़ें अगर ख़ुद बनाएं, अपने मसाइल ख़ुद हल करें, अपने इरादों से वो बरमला तौर पर नुमाया हो के फैसले अपने करने लग जाएँ तो बैरूनी कैसे अनासिर को कबूल करेंगे। इस्तिक़लाल को छीना जाए, इस्तिक़लाल कैसे छीनेंगे, उस कौम के अंदर गुरबत और अफलास को लाया जाए, उस कौम की खुद इतमादी को छीन लिया जाए, साबित किया जाए तुम नहीं कोई इरादा रखते, तुम अपने इरादे से एक सुई तक नहीं बना सकते, तुम अपने इरादे से किसी को भी अपने सियासी निज़ाम में बरमला तौर पर नहीं बरसर इख्तदार कर सकते, तुम हमारे इस तौर पे मोहताज हो, हमने तुम्हें पैसा देना है। लिहाजा अभी पाकिस्तान में देखें भागे भागे स्टेट बैंक के पास जाते हैं, मिनत समाजत करते हैं और फिर हमारे सामने सीना चौड़ा करके गलत सलत उर्दू बोल के अपना कारनामा ये बयान करते हैं कि हम कर्ज लाने में कामयाब हो गए। वो तो कहते हैं कि तुम जो रोटी के नवाले खाओगे वो हम देंगे, जो तुम्हारे ऊपर फैसले होंगे वो हम करेंगे। तो फ़लस्तीन के अंदर भी ये सूरत हाल थी। नंबर 3, अस्करी अनासिर को मशगूल रखा जाए, کیونکہ عسکری عناصر سے ہر قوم نجات پاتی اور اللہ تعالیٰ نے ہر زمین پہ یہ عناصر رکھے ہوئے ہیں. ان عناصر کو اول منظم نہ ہونے دیا جائے, نمبر دو آپس میں درگیر کیا جائے, آپس میں لڑاتے رہیں. لہذا فلسطین کے اندر بھی انہوں نے یہ کیا, تفرقہ, استقلال کا کھو دینا, آزادی کا چھین لینا ملکی مسائل کھڑے کر کے, اور نمبر تین جو ایک قوم اور ریاست کو اپنے قدموں پہ کھڑے کرنے کے عناصر ہیں ان عناصر کو آپس میں الجھا کے تباہ و برباد کرنا. یہ ان کے پاس ظاہری طور پہ, اس طرح تین چار اور بھی بعض اسباب ہیں, لیکن یہ اساسی ترین اسباب ہیں جس کی بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بہت زور دیتے تھے. رہبر معظم اپنی تقاریر میں بار بار اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں, اور پھر وہ آرام سے دندناتے وحشت پھیلاتے ہوئے درندے بن جاتے ہیں اور اپنے مد مقابل کو صفحہ ہستی سے مٹاتے ہیں, یعنی چوتھے پیمانے پہ پھر وہ آرام سے رزلٹ لیتے ہیں, آرام سے نتیجہ لیتے ہیں. اس کا توڑ کیا ہے, یہ بڑی ایک دلچسپ چیز ہے. اس کا توڑ کیا ہے؟ اس کا توڑ اول چیز وحدت ہے. تفرقے کا علاج وحدت ہے. اختلاف کو اپنی چار دیواری میں اور علمی دائرے کے اندر بس رکھو, اس کو بیرونی طور پہ باہر نہ آنے دو. آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی کثیر احادیث ہیں, ایک دو احادیث نہیں ہیں, کثیر احادیث ہیں کہ انہوں نے اس دور میں اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کو داخلی انتشار کا شکار ہونے سے بچانے کی بھرپور کوشش کی. مثلا اگر حاکم نے چاند کا اعلان کر دیا ہے, بعض روایات اس طرح سے موجود بھی ہیں, اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس کی خبر ہوئی تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مد مقابل اعلان نہیں فرمایا, انتشار ایک پھیلتا ادھر, حالانکہ ذمہ داری حاکم شر کی ہے وہاں پہ. اسی طریقے سے حکومت لے لی, اب حکومت حقدار کے ہاتھ میں آنے کے لیے ایسی تدبیر اختیار کی کہ ملت انتشار کے ضعف کا شکار نہ ہو. ایسی تدبیر امیر المومنین علیہ السلام نے بھی ایسی تدبیر اختیار کی. لہذا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا خلفاء کو مشورے دینا یا ان کے لیے مختلف حفاظتی اقدامات کرنا وہ خلفاء کے لیے نہیں تھے, امت اسلامیہ کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے تھے. اور اسی وحدت اسلامی کے برقرار رکھنے کے نتائج میں سے ایک اہم ترین نتیجہ خلیفہ دوم کا روم اور ایران جیسی سپر پاور کو شکست دے دینا ہے. وہ وحدت اسلامی کی وجہ سے انجام پائے. جیسے آج وحدت اسلامی اگر جنم لے لے تو کیا رشیا اور امریکہ وہ مسلمانوں کے ان 60-70 ممالک کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کھڑا ہو سکتا. ایسا امام علی علیہ السلام نے انتشار نہیں اندر پھیلنے دیا. اختلاف اپنی جگہ موجود تھا, اظہار فرماتے تھے وقتاً فوقتاً, لیکن جو خدمت اسلامی معاشرہ و امت اسلامیہ کی کر سکتے تھے ان وظائف کو انہوں نے انجام دیا. دوسری چیز, آزادی کا مطالبہ کریں. اگر کوئی اپنے طور پہ ملک کے اندر آ کے زبردستی اپنے امور اور نظریات اور اپنی پالیسیوں کا ہمارے اوپر حاکم کرے, ہمیں اس کے اوپر اعتراض کرنا چاہیے, سراپا احتجاج بننا چاہیے. اپنے عناصر کی حفاظت کریں. وہ عناصر چاہے وہ تعلیمی اور ذہنی طور پر ہوں, وہ ایک ملک کا اثاثہ شمار ہوتے ہیں. آج کے دور میں یہ جرم ہے کہ کسی ملک کے اندر اس ملک کے جو باشندے تھے ان میں کوئی نامور شخصیت اس نے تالیفات لکھی ہیں جو قیمتی ہیں, جو علمی دنیا میں ایک مارکہ شمار ہوتی ہیں یا قیمت رکھتی ہیں یا اس ملک کی ایک کلچر اور ثقافت کو شو کرتی ہیں. وہ اگر کوئی چورا کے لے جائے اسے چوری شمار کریں گے, کیونکہ وہ اس ملک کے عناصر میں سے ہے. آیت اللہ سیستانی دامت اللہ العالی نے بھی 2003-04 میں یا اس کے بعد 5-6 میں یہ فتویٰ دیا کہ عراق کے جو تیل کے اثاثے ہیں وہ عراقی قوم کے ہیں, وہ سرزمین عراق کے باشندوں کا پہلا حق بنتا ہے, نہ کہ دیگران کا پہلا حق بنتا ہے. چونکہ امریکہ ادھر سے خوب تیل کے ذخائر کو اکٹھا کرو, رب بھی یہ اس کے بڑے بڑے بیسز اور بڑے بڑے اس طرح سے کنویں موجود ہیں اور ان سے وہ استفادہ کر رہا ہے. لہذا یہ جو آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ تعالی نے فتویٰ دیا, فتوے کی دنیا میں خود یہ ایک انقلاب ہے, یہ انقلاب شمار ہوتا ہے. جو مکتب تشیع میں بعض اندرونی مسائل تھے ان میں یہ انقلاب شمار ہوتا ہے کہ عراق ملک اور اس کے باشندوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فتوے کی صورت میں جاری کریں کہ یہ ملکیت ان لوگوں کی ہے. لہذا یہ ہمارے پاس دوسری बात आई कि इस्तेकलाल को वजूद दें, अनासिर की हिफाजत करें अपने। जो कौम और जो मुल्क अपने अनासिर की हिफाजत नहीं कर पाता और उसकी कदर नहीं करता, वो जलीलो ख़्वार होकर रहती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर आप गौर करें कि पाकिस्तान का एक कीमती तरीन असासा अब्दुल कदीर ख़ान रहमतुल्लाह अलैह थे। मोहसिन मिल्लत कौम ने उन्हें ख़िताब दिया, लेकिन जो आलूदा और अगवाशुदा जर्नैल थे उन्होंने उनका जीना हराम कर दिया, ज़िंदगी अज़ियत में उन्होंने गुजारी। और ये अल्फाज हैं कि काश मैंने इस मुल्क के लिए कुछ ना किया होता। और ये बयान किया कि मैं बिजली के हवाले से सस्ती बिजली बनाने के फार्मूले और मंसूबे दे सकता हूँ, लेकिन अब मैंने फ़ैसला किया इस कौम के लिए मैंने कुछ नहीं देना, क्योंकि कौम वो सोई भी है। 25 करोड़ तादाद हो गई है लेकिन कोई परेशानी नहीं है। जर्नैल ने कह दिया कि इसे नज़रबंद रखा जाए, ठीक है, हम भी राज़ी हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कुलचे चनों का नाश्ता करके आराम से हम फिरेंगे और मजम्मती बयान जारी करने में मसला ही कोई नहीं है। अगर एक कौम कदरदान नहीं है अपने अनासिर की, तो फिर तो आराम से इस्तेमार उधर हुकूमत करता है। ख़ुद अब्दुल कदीर ख़ान के ये कलिमात हैं कि गौरी मिसाइल, हालांकि इस नाम के ऊपर भी एतराज़ होना चाहिए कि आप अपने मुल्क के अनासिर के ऊपर उन मिसाइलों का नाम रखें। वो जो फतह के नाम से मुख्तलिफ अफराद आए और उनका डाकू होना ज़्यादा आशकार है, उनके नामों पर तो अपने मिसाइल और अपने असासों के नाम नहीं रखे जाएंगे। कई शहीद हैं जिन्होंने निशाने हैदर लिए, उनके नाम पे मिसाइलों के नाम रखे जाएं। बहरहाल उन्होंने उसकी रेंज बढ़ाई, 2000 से बढ़ाकर 5000, और दरख्वास्त जमा कराई। कहते मुझे शख्सी तौर पे मुशर्रफ ने बुलाया और कहा कि तुम इसराइल को हिट करना चाहते हो, अपने इस मंसूबे को बंद करो वरना रह नहीं सकोगे। धमकी दी, शदीद धमकी दी उन्होंने। तो कहते हैं नहीं, उसे आगे बढ़ाने दिया, रेंज नहीं आगे बढ़ाने दी, कि हमारा दुश्मन फ़क़त इंडिया है, उसके लिए चंद सौ या चंद हज़ार बस हमें रेंज चाहिए, इसी पर हमें रेंज ही नहीं चाहिए उसकी। लिहाजा आपने मुलाहिज़ा किया कि ये मसाइल हैं कि उन्होंने कंट्रोल किया वह सिस्टम को। इसलिए जो कौम अपने अनासिर की हिफाजत यानी वहदत को तोड़ दे, जैसा वो कहते हैं वैसे तफरके बाज आके तफरका फैलाएँ, नंबर दो इस्तकलाल छीन लें, एक दीवार खड़ी करना हमारे बस में नहीं, एक सोसाइटी बनाना वो उनसे छीन लें, तो उसका नतीजा यही कौमों में जिल्लत और पस्ती बनता है। और उस पर सरापा एहतजाज भी नहीं है, गैरत भी अंदर से जा रही है, आज़ादी के जाने का कोई गम और दुख ही नहीं है। उर्दू दान मुल्क इंग्लिश अंग्रेज़ी ज़ुबान है जी, क्यों इंग्लिश अंग्रेज़ी ज़ुबान? इंग्लिश पर फ़ख्र करते हैं, क्यों इंग्लिश पे फ़ख्र किया जाए? ठीक है, तालीमी ज़ुबान थी तो तालीमी इदारों में चलती, रस्मी तौर पे मुल्क के अंदर क्यों चलाएं उसे? हमारे हर फौजी के पास ये ज़ुबान क्यों हो? लिहाजा यहाँ पे आपने देखा कामिलन ग़ुलाम उन्होंने बनाया, इस्तकलाल हमारा छीना, हमारे अनासिर को अगवा किया उन्होंने, और कर रहे हैं तालीमी नाम से ले जाते हैं, हाई एजुकेशन के नाम से मुख्तलिफ़ तरह के ट्रेनिंग टूर्स और रिहर्सल कराने के लिए हमारे दिफाई अस्करी अनासिर वहाँ पर जाते हैं, उनके हाथों में चले जाते हैं। आखिरी चीज़ फिक्री इन्हेराफ, फिक्री इन्हेराफ इंतहाई तेज़ी से फैलाया जा रहा है, लिहाजा ये फिक्री इन्हेराफ लुबनान में भी और ये फिक्री इन्हेराफ फ़लस्तीन में भी फैलाया गया। इसका नतीजा क्या निकलता है? आँखों के सामने जब ईमान उठ जाए तो वो तस्वीर कशी उभरती है जो शैतान देता है, और इसी पर मैं गुफ्तगू अपनी तमाम करता हूँ, क्योंकि असल जो गम है और असल शिकस्त जो जन्म लेती है वो शख्सियात और हीरोज़ का जाना नहीं है। एक अजीम शख्सियत जब इस दुनिया से अजीम तरीन तरीके से रुख्सत होती है, जिसका नाम शहादत है, और अजीम तरीन हदफ़ को हासिल करते हुए उसने क़ुरबानी दी होती है, अपनी ज़ात के लिए क़ुरबानी नहीं दी, उसने अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, दीन इस्लाम व मुस्लिमीन के लिए क़ुरबानी दी है, तो वहाँ पे वो शख्सियत हीरो बन जाती है। ये अब उम्मत इस्लामिया का अनासिर बन गए हैं, उनकी मीरास बन गए हैं। इधर उम्मत इस्लामिया का वजीफ़ा है कि इन हस्तियों की हिफाजत करें, याद उनकी, उनका तस्करा, उनकी शख्सियत, उनकी अजमत, इसको वो दिलों में ज़िंदा रखें, क्योंकि जो कौम अपने अनासिर की कदर नहीं करती वो हतमन व हतमन ज़िल्लत का शिकार होती है। और रहबर मौज़म ने ही फरमाया कि शहदा की याद मनाना खुद शहीद होने से कमतर नहीं है, क्योंकि हर कोई हमारे में हमें से चाहता है कि जाए दुश्मन के मुकाबले में शहीद हो। आरजू की हद तक तो मौजूद है, अगरचे मौत से कुछ डर लगता है या मसाइल दीगर हैं कि सख्ती से घबराते हैं, लेकिन आरजू तो है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर कोई शहीद इन्हीं हीरोज़ की, जो उम्मत इस्लामिया के हीरोज़ हैं, एक ममलिकत के नहीं, एक कौम के नहीं, इंसानियत के और उम्मत इस्लामिया के हीरोज़ हैं, जैसे कि शहीद कासिम सुलेमानी रहमतुल्लाह अलैह, शहीद हसन नसरुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, शहीद इस्माइल हनिया रहमतुल्लाह अलैह, या इस दीगर जो शहदा हैं, शहीद आरिफ हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, इन शहदा की जो याद को दिलों में उम्मत के बाकी रखने का काम करता है, ये वही काम कर रहा है कि जो शहीद आगे बढ़कर सीना सपर होकर अपनी जान फिदा कर रहा है, ये उससे कम नहीं है। लिहाजा अगर ये ईमान हाथों से निकल जाए तो क्या होगा, अब जहन में तस्वीर कशी और आंखों में तस्वीर कशी वो इबलीस आके करता है। इसमें एक वाकया सुना के ये जहमत आपके तमाम की जाती है, क्योंकि इसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। वो अफराद, हम जैसे अफराद के जो नहीं आगे सफ़े अव्वल पे जाके महाजों में कई मुख्तलिफ असबाब की वजह से नहीं लड़ सकते, ये अपना हिस्सा देना चाहते हैं, लेकिन ऐसे उनके इर्द गिर्द असबाब ईजाद हुए हुए हैं कि वो नहीं उनमें आगे बढ़कर माली या जानी एतबार से या खिदमती एतबार से हिस्सा दे ले सकते हैं। वो हद अकल ये काम कर सकते हैं कि सहयूनी इसराइली प्रोपागेंडे का मुकाबला इन्हीं महाजों पे, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इनके शिकार हुए बग़ैर इन्हीं महाजों के ऊपर उनके प्रोपागेंडे को नाकाम करें। वो ये काम कर सकते हैं कि दुश्मन इस टाइम एक छोटी सी तस्वीर इन इस्लामी हीरोज़ की बर्दाश्त नहीं करता और उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, पेजेस ब्लॉक कर देता है। तदबीर करें वो कि इन हीरोज़ का तारुफ कराना अपने ऊपर वजीफ़ा आयद कर ले, अपने ऊपर लाजिम करार दे दे, ताकि इस तरह की अमसाल और इस तरह की शख्सियात वो आलम सलाम से बेदार और ज़िंदा होती रहें। लिहाजा ये वाक़ इस तरह से है कि अगर ये हमने ईमान और अपने इस असासों की, जो उम्मत इस्लामिया के असासे हैं, शख्सियात, हीरोज़, इनकी हिफाजत ना की, इनकी याद को हमने कायम दायम ना रखा, तो फिर क्या नतायज निकलते हैं। ग़ज़वा बदर थी, मुसलमान 313 थे। इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि अगर जो टेक्नोलॉजी ऊपर है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लाजिम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, हतमी तौर पे हमें यह कदम उठाना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी में वो क्योंकि फोकियत रखता है इसलिए तबाहकारी खूब करता है। लेकिन ये जहन नशीन रखें, असलाह और टेक्नोलॉजी की असास के ऊपर कभी फतह हासिल नहीं होती। लिहाजा जो शहीद होगा हमारा हीरो बन जाएगा, नुकसान नहीं है हमारा उसमें, और खुसूसन जब सिस्टम बन गए, इस टाइम हिजबुल्ला सिस्टम बन चुका है, इस टाइम सपाए पासदारान सिस्टम बन चुकी है, सपाए कुछ सिस्टम है, हमास का सिस्टम है, एक खुद हमास एक सिस्टमेटिक है, तालिबान की तरह अगवा शुदा ये तंजीमें या ग्रोह नहीं है, पूरी सिस्टमेटिक है। सिस्टम बना हो तो एक लीडर के जाने से वो सिस्टम बैठ नहीं जाता, क्योंकि वो अपने सिस्टम की वजह से, इन नज़म की वजह से चल रहा है। सिर्फ ऊपर बैठा हुआ अमीन है और उसकी तदबीर से फ़ायदा उठा रहे हैं, और उसकी खिदमात जो एक अरसा दराज से खिदमात हैं, उसकी वजह से वो एक शख्सियत जो है वो अपने दिलों के अंदर मोहब्बत और उल्फत और मानूसियत पैदा कर चुकी है। लिहाजा उसका गम ज़रूर होता है और एक असर उसका बरपा होता है, लेकिन सिस्टम शख्सियात के जाने से ख़त्म नहीं होता। मसीह इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत इस दुनिया से चली गई तो कतन ऐसा नहीं था कि इनकलाब इस्लामी बैठ जाए। इनकलाब के आगाज़ में तो पे दर पे अजीम तरीन शख्सियात गईं और एक साथ गईं, जैसे शहीद बहिश्ती, शहीद रजाई, शहीद बाउनर, शहीद मुताहरी, पे दर पे ये शख्सियात गईं। इस तरह महसूस होता था तन्हा इमाम खुमैनी और गया मुल्क, ये अवामी एहसास आई, अवाम के अंदर ये नाउमीदी, ये शैतान की तरफ से आती है। लिहाजा असल फतह जो है वो हक की राह अव्वल हो, इस्तेकामत का मुजाहरा किया जाए और इस्तेमरार के साथ अपने मोहकम तौर पे कदमों को जमा कर दुश्मन के मुकाबले में खड़ा हुआ जाए। लिहाजा और बहरहाल ये बहस हमारी जुदा हो जाएगी, इस जगह पे ये बयान करना मकसूद था, टेक्नोलॉजी की फोकियत की वजह से वो तबाहकारी बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है लेकिन गलबा नहीं पा सकता। कभी गालिब टेक्नोलॉजी की असास पे हुकूमतें नहीं आईं, कभी ग्रोहों ने टेक्नोलॉजी की असास के ऊपर फतह हासिल नहीं की। फतह के असबाब वो दीगर होते हैं, जैसे हिम्मत ना हारना, ना उम्मीद ना होना, मुसलसल जहमत और कोशिश जारी रखना, अमीर की इताअत करना, वहदत को कायम रखना, झगड़ों से इज्तनाब करना, ये गलबे के असल राज हैं। बातिल हो या हक हो, हर दो में ये अल्लाह ने कानून फतह रखा है। अब बातिल भी फतह होगा तो इन्हीं असबाब की वजह से होगा, और अगर हक फतह होगा वो भी इन्हीं असबाब की वजह से होगा। लिहाजा इस वाक़े के ऊपर आप दिक्कत करें, इससे आपको ये मालूम हो जाएगा कि कैसे फिक्री जब इन्हितात और इन्हिराफ आता है तो इबलीस तस्वीर कशी जहनों में करता है। उस तस्वीर कशी की वजह से वो प्रोपागेंडा उनके ऊपर कामयाब होने लगता है और कौम नीचे बैठ सकती है, और इसी से हमने बचना है। अल्लाह के वादों पर ईमान अपना कामिल रखना है। कोई वो नामवर अगर राहबर मौजूद ना हो तब भी अल्लाह मौजूद है, तब भी अल्लाह का वली इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, तब भी ईमान की कुव्वत वही तासीर रखती है जो माजी में हमने ईमान की कुव्वत देखी थी। ईमान उजागर करने की ज़रूरत है, तब भी इस्तेकामत की वही ज़र्ब दुश्मन की पर पड़ेगी जो इससे पहले इस्तेकामत की ज़र्बत की वजह से मुसलमानों ने फतह की एक सआदत को हासिल किया। लिहाजा ये असल राज है, ये तो छिनने वाली चीज़ें नहीं है मुसलमानों से। लिहाजा इस वाक़े को मैं तेज़ी से बयान कर देता हूँ कि यह तफसीर कुम्मी और हमारे यहाँ दीगर कुतुब में भी वारिद हुआ है कि मुसलमान जब आमने सामने हुए बदर के मौके में, पहला पहला गजवा था, मुसलमानों के पास कुल घोड़े 2 थे, पाँव में अक्सर के तो जूती नहीं थी, तलवारें भी कलील थीं और खाने पीने का सामान भी कम था, रेतली जगह थी, क्योंकि रेतली जगह के ऊपर घोड़े हों तो उनका वार शदीद होता है और प्यादा लड़ा नहीं जाता, क्योंकि बार बार पांव ज़मीन पे धंस रहे होते हैं तो पांव ज़मीन पे जमते नहीं हैं। और मुसलमान 313 वो 3 गुना ज़्यादा थे, 1000 से ऊपर आबादी और मुसल्ला कसरत घोड़े और ऊँट और खाने पीने का सामान और असले से लदे हुए जरे उन्होंने पहनी हुई थी, तलवारें नेज़े पकड़े हुए थे। यहाँ पर मुसलमानों ने जब निगाह डाली तो अब रवायत में वारिद हुआ कि जा इबलीस व कुरैश फी सूरत सुराका बिन मालिक, सुराका बिन मालिक की शक्ल में इबलीस आया। अच्छा, उसने आके क्या काम किया, उसने इन काफिरों को कहा यानी मुशरिकीन को कि मैं तुम लोगों के हमरा हूँ, क्योंकि इसकी एक कदर व कीमत थी और यह सरदारों में शुमार होता था, तो इसके अपने अंदर मौजूद होने से ये मुशरिकीन बड़ी एक कुव्वत का एहसास थे। तो इसने कहा मैं तुम लोगों के साथ हूं और तुम लोग आगे बढ़कर हमला इनके ऊपर करो और मैं तुम लोगों का दिफा करने वाला हूं। लिहाजा उसके बाद आया अपने शियातीन के पास इबलीस और उन्हें कहा कि जाओ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर वालों की आंखों में धूल झोलो। धूल झोलो उर्दू में एक मुहावरा है, यानी उनकी आंखों में जो नजारा है ये वो कई गुना बड़ी फौज का कर दो। और यही उन्होंने किया कि जहनों में तस्वुरात मुसलमानों के दरमियान ये बनाए कि उनको वो 1000 नहीं, वो 10 या 20 हज़ार का लश्कर दिखाई दे रहा था और बड़े बड़े उनके पास असलहे और उनकी आगे बढ़कर काट खाने वाली तलवारें उन्हें नज़र आ रही थी और इस तरह उनके हौसले बैठ रहे थे, मुसलमानों के हौसले बैठ रहे। अब हौसला बैठा हुआ इंसान वो ज़्यादा देर मुकावमत नहीं कर सकता, वो फौरन शिकस्त खा जाएगा, क्योंकि अंदर हौसला हो तो जीदार तरीके से आगे वो डट सकता है, हौसला ही बैठ गया तो फिर क्या लड़ना। लगा उसने भी आया और शयातीन ने उनके घोड़ों की कई गुना तादाद बड़ी दिखाई और खौफ उनके दिलों में ईजाद किया कि आज तो तुम गए, मौत उन्हें अपनी आंखों में नज़र आने लग गई। अच्छा, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मंज़र देखा तो उन्हें कहा अपनी नज़रें झुका लो, तुम लोग दुश्मन की तरफ निगाह ना डालो और अपने दांतों को भींच लो सख्ती से और अपनी तलवारों को खोल के लहलहाने के लिए बाहर निकाल दो, और जब मैं तुमको हुक्म दूं तो तुम आगे बढ़ जाओ। तब अल्लाह की बारगाह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ की कि बारे इलाहा, अगर ये जमात आज शिकस्त खा गई तो ज़मीन पर तेरी इबादत नहीं होती, अगर तू चाहता है कि तेरी इबादत की जाए इन्हें फतह अनायत फरमाए। फिर रवायात में वारिद हुआ कि जिब्रील अमीन आए और उन्होंने अपने एक पर से ये जो सुराका बिन मालिक है उसके मुंह के ऊपर पर मारा और इबलीस वहाँ से इंतहाई जिल्लत के साथ फरार हुआ और उनकी आंखों में उनकी असल तादाद सामने आई। और दूसरा उन्होंने कहा कि मुशरिकीन की आंखों में मुसलमानों की हैबत और रौब को बढ़ा दिया। लिहाजा आपने देखा कि अल्लाह की जो मदद आई, कुरान करीम में कई आयात में ये है, अल्लाह की मदद अव्वल आती है कि हौसला बढ़ा देते हैं, हिम्मत उम्मीद बहुत कवी हो गई। नंबर दो, दुश्मन की आंखों में इस कलील जमात का रोब डाल दिया, दुश्मन के कलूब में रोब का डालना और इन मोमिनीन के दिलों में उम्मीद का कवी तौर पे उभर आना और अल्लाह के तवक्कुल के ऊपर उनका आगे बढ़ के जंग लड़ना, ये फतह का बायस बन के और कलील जमात कसीर जमात के ऊपर गालिब आ गई। और ये कुरान करीम ने कहा है कि वो अफराद जिन्होंने कालू रब्बना थुम्मा इस्तकामू, जिन्होंने कहा कि अल्लाह, कालू रब्बुनल्लाह, हमारा रब कौन है, अल्लाह है, थुम्मा इस्तकामू, फिर इस्तकामत के साथ डट गए, फरिश्ते उनके ऊपर नाजिल हुए। फरिश्ते नाजिल होके गर्दने नहीं उड़ाते, हौसलों को नहीं बैठने देते, हौसले बुलंद करते, इसलिए फरिश्तों से ताल्लुक़ जुड़ जाए ये हौसले पाइंदा और बुलंद होते रहते हैं, इबलीस से ताल्लुक़ जुड़ जाए दुश्मन का खौफ दिलों में बैठता चला जाता है। लिहाजा हमेशा तारीख में आप, ख़ुसूसन तारीख़ इस्लाम में जितने हक के मारके हैं, आप उठा के तारीख पढ़ें, एक मारके में भी जो अहले हक को फतह हासिल हुई है वो असलहे और अफराद की कसरत की असास पर नहीं हुई, बल्कि हक के ऊपर अल्लाह पर तवक्कुल करके इस्तेकामत से साबित कदम रहने की वजह से ये फतह हासिल हुई है। जंग उहुद में मुसलमानों की तादाद भी ज़्यादा थी और रोब भी गुज़िश्ता जंग का ज़्यादा था और असलहे भी मौजूद थे, लेकिन मुसलमानों को सख्त ज़ख्म लगा। ग़ज़वे हुनैन, मक्का फतह हो गया, पलट रहे हैं बड़े फतह के साथ, हज़ारों का लश्कर है और असलहा भी खूब है, एक छोटे से कबीले ने ऐसा उन्हें बितकाया, ऐसा बितकाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान कामिलन ख़तरे में पड़ गई और मौजज़ाती तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचे। अक्सरियत थी उधर तो मुसलमानों की। लिहाजा ये हमारे पास तारीख़ी वाक़ियात हैं और यही अभी हम हिज़्बुल्लाह में अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं। हिज़्बुल्लाह के जुम्मे के दिन जो फतूहात हैं कि 20 के करीब उन्होंने 17 इसराइलियों को वासले जहन्नम किया, 3 को उन्होंने ज़ख्मी किया और आज उन्होंने 2 फौजी पकड़े भी हैं और कई इलाकों पे उन्होंने मिसाइल भी दागे, अगरचे इसके नतीजे में दुश्मन भी अपने तौर पे वार करता है, जैसे खबरें उड़ रही हैं, अभी तक हिज़्बुल्लाह की तरफ से कामलन तायद नहीं आई कि सैयद हाशिम सफ़ीउद्दीन वो शहीद कर दिए गए, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, जब तक हतमी खबर नहीं आती, लेकिन इससे उम्मीदें खोने की ज़रूरत नहीं है, हौसले बिठाने की ज़रूरत नहीं है। असल राज वो यही है कि फरिश्तों के साथ ताल्लुक़ हो और अल्लाह पे तवक्कुल करें, इस्तेकामत के साथ अपने अंदर उम्मीद को जगाते रहें और यही कलील ग्रोह, जैसा कि सैयद हसन नसरुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सतंतसिर, अन करीब ये पूरी दुनिया देखेगी कि ये कामयाब है। खुतबा जुम्मा में भी रहबर मुअज़्ज़म ने दोबारा इसके ऊपर ताकीद की कि हिज़्बुल्लाह हतमन व हतमन, हिज़्बुल्लाह और हमास इस मार्के के अंदर कामयाब हैं और इंशाअल्लाह ताला ये हम अपनी आँखों से दोबारा मंजर 2006 के बाद देखेंगे कि इन कलील निहत्ते अफराद ने अल्लाह के ऊपर तवक्कुल और ईमान की दौलत और वहदत की बरकत से इस पूरी दुनिया के इस्तेमार और फैशी दरिंदे सहूनी के ऊपर गलबा पा के फतह हासिल की है। वसल्लल्लाहु अला सैयदिना मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।